यह 18.91 की अवगतवाणी हेडिंग दिया है प्रत्यक्षता का आधार दृढ़ प्रतिज्ञा। आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों से मिलन मनाए रहे हैं। कैसे बच्चे और कैसे बाप, समर्थ बाप और समर्थ बच्चे। असमर्थ बाप और असमर्थ बच्चे कौन से होते हैं? असमर्थ बाप जो जो विश्व कल्याण का ठेका उठाए और ठेका उठाने से पहले ही खलास हो जाए। जितने भी धर्म पिताएं हैं उन्होंने सब ने ठेका तो ये उठाया, हम विश्व को क्या बनाएंगे, हम विश्व को नई दुनिया बनाएंगे। और फिर अंत में अंजाम क्या हुआ है, खलास हो गए और अपनी पीढ़ी को भी नीचे ले गए। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक जितने भी आए सबका यही अंजाम हुआ, संग के रंग में रंग गए। और उनके फॉलोअर्स जो बच्चे हुए वो भी गुरु जिन के अंधले चेला सत्यानाश हो गए, तो समर्थ नहीं हुए। समर्थ फिर किसे कहा जाए, जो जो एम ऑब्जेक्ट लेकर के आया है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, उस एम ऑब्जेक्ट को पूरा करे। तो समर्थ बाप परमात्मा शिव ज्योति बिंदु इस सृष्टि पर किस लिए आता है, नरक को स्वर्ग बनाने के लिए, पतितों को पावन बनाने के लिए। इस समर्थ कार्य में उसको ये डर नहीं रहता है कि पतितों के संग आने से मैं पतित बन जाऊंगा, पतित दुनिया के बीच में आने से मैं पतित बन जाऊंगा, वो कभी पतित नहीं हो सकता। डर किसको रहेगा, जिसमें असमर्थी होगी उसको डर रहेगा कि मेरे ऊपर कहीं आंच ना आ जाए। लेकिन जो समर्थ होगा उसको किसी प्रकार का कोई भय नहीं हो सकता। तो जब ऐसा बाप होगा तो बाप के बच्चे भी कैसे होंगे, समर्थ बाप के समर्थ बच्चे, विश्व कल्याणकारी बाप के विश्व कल्याणकारी बच्चे। ऐसे बच्चे नहीं कि इनका तो भगवान भी कल्याण नहीं कर सकता। तो इसका मतलब कि विश्व कल्याणकारी बच्चे नहीं हुए। जब हमको बाप मिल गया मास्टर सर्वशक्तिवान, तो मास्टर सर्वशक्तिवान के बच्चे भी कैसे होंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे होंगे। तो आज दिन कौन सा, स्मृति दिवस है। कितने वक्त गुजर गए ये स्मृति दिवस मनाते मनाते, तो बताया कि समर्थ बच्चों से मिलन मनाए रहे हैं, असमर्थ बच्चों से मिलन नहीं मनाए रहे हैं। समर्थ बाप ने हर बच्चे को सर्वस्मृतियों का खजाना अर्थात सर्वशक्तियों का खजाना ब्राह्मण जन्म होते ही जन्म से सर्वस्मृतियां, आत्मा की सर्व स्मृतियों में कौन कौन सी बातें आ जाती है, आत्मा के अंदर जो भी रिकॉर्ड भरा हुआ है अनेक जन्मों का, वो सब स्मृतियां किसमें आनी चाहिए, आत्मा के अंदर आनी चाहिए ना। तो उन सर्व स्मृतियों का खजाना अर्थात जो ज्ञान है, ज्ञान का बल है, उस बल में ही सर्व शक्तियों का खजाना भरा हुआ है। और वो कब दे दिया, जन्म सिद्ध अधिकार। जन्म सिद्ध अधिकार हुआ माना जन्म होते ही जन्म लेने वाले बच्चे का अधिकार होता है बाप की शक्तियों पर। तो जैसे उस दुनिया में तो जन्म होता है तो बच्चा छोटा होता है, और यहाँ बाप ने क्या कहा, सर्व शक्तियों का खजाना दे दिया। चाबी दे दी माना खजाना दे दिया। हर एक ब्राह्मण आत्मा अपने इस अधिकार को प्राप्त करके स्वयं संपन्न बन औरों को भी संपन्न बनाए रहे। अगर स्वयं संपन्न नहीं बने हैं सर्व शक्तियों से सर्व प्रकार की स्मृतियों से तो दूसरों को भी संपन्न नहीं बना सकेंगे। वे सर्व स्मृतियां बाप दादा ने हर एक बच्चे को अति सहज और सेकंड में दे दी। कैसे दी? सेकंड में स्मृति दिलाई तो स्मृति ही सर्व समर्थियों की चाबी बन गई। सेकंड में स्मृति कैसे दिलाई जाती? कि सर्व शक्तियों के खजाने के हम मालिक हैं, विश्व के मालिक के हम बालक हैं। अर्थात जब विश्व का मालिक हमारा बाप है, ये प्रैक्टिकल जीवन में पहचान लिया तो बच्चे भी जरूर मालिक होने चाहिए। तो सेकंड में स्मृति दिलाने का मतलब क्या हुआ? बाप की निश्चयात्मक दृढ़ बुद्धि से ये पहचान हुई कि ये हमारा बाप है, तो उसी समय से वो शक्तियां भी आ जाती। स्मृति आई मेरा बाबा, और बाप ने कहा ये मेरे बच्चे। तो यही रूहानी स्मृति सर्व खजानों की चाबी सेकंड में दे दी। मेरा माना और सर्व जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हो गए। तो सहज मिला ना कि मुश्किल हुआ? सहज हुआ ना। अभी हर ब्राह्मण आत्मा निश्चय और नशे से कहते हैं कि बाप का खजाना सो मेरा खजाना। बाप के खजाने को अपना बनाई दिया। तो आज के दिन को भी विशेष स्मृति दिवस कहते हो। ये स्मृति दिवस सर्व समर्थी बच्चों को देने का दिवस है। वैसे तो ब्राह्मण जन्म का दिवस ही समर्थियां प्राप्त करने का दिन है, लेकिन आज के स्मृति दिवस का विशेष महत्व है। वो क्या महत्व है जानते हो? आज के स्मृति दिवस पर विशेष ब्रह्मा बाप ने अपने आप को अव्यक्त बनाया, खुद को क्या कर दिया? अव्यक्त बनाई दिया। व्यक्त साकार रूप में विशेष बच्चों को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने की विशेष विल पावर प्रदान कर दी। किसको? बच्चों को। बच्चों में भी नंबरवार जो जितना विल पावर वाला बच्चा होगा वो उतनी ही विश्व की बाध्यशाही प्राप्त करेगा। विल पावर मन हिम्मते बच्चे तो मदद बा। जैसे आदमी अपने को सर्व संबंध और संपत्ति को सेवार्थ शक्तियों के आगे विल की, ऐसे आज के स्मृति दिवस पर ब्रह्मा बाप ने साकार दुनिया में साकार रूप द्वारा क्या कहा? साकार दुनिया में साकार रूप द्वारा विश्व सेवा के निमित्त शक्ति सेना को अपना साकार रूप का पार्ट बजाने की सर्व विल पावर बच्चों को मिल गई। किसने? किसने? ब्रह्मा बाप ने साकार दुनिया में साकार रूप द्वारा, मीडिया कौन? साकार रूप कौन से दिवस पर? 18 जनवरी 1969 उस दिन किस मीडिया के द्वारा? साकार रूप द्वारा। तो वो साकार रूप कौन, जिसके द्वारा विश्व सेवा के निमित्त शक्ति सेना को अपना साकार रूप का पार्ट बजाने की सर्व विल पावर्स बच्चों को विल कर दी। विल करते हैं ना, कोर्ट में जाकर के क्या करते हैं, लिखते हैं ना, हाँ, तो विल कर दी उस दिन। काहे की पावर, विश्व सेवा के निमित्त बनने की, जो निमित्त शक्तियां हैं शक्ति सेना, उनको अपना साकार रूप का पार्ट बजाने की विल पावर्स दे दी। किसकी शक्तियां हैं, शिव की शक्ति सेना, एक दो शक्ति नहीं है, पूरी सेना है। तो क्या राणा बेबा हैं, विडोज हैं क्या, वो शिव की शक्तियां विडो हैं क्या, उनका पति साकार में मर गया कि मौजूद था उस समय, कहा किसके द्वारा, साकार दुनिया में साकार रूप द्वारा विल पावर दे दी। स्वयं अव्यक्त रूप गुप्त रूपधारी बने और बच्चों को व्यक्त रूप में विश्व कल्याण के प्रति निमित्त बनाया, अर्थात साकार रूप में सेवा के विल पावर्स की विल की। करो विश्व कल्याण, बनो विश्व कल्याणकारी, राजा ही नहीं दे दी, क्या दिया है? सेवा की विल पावर्स विल कर दी। इसलिए इस दिन को स्मृति दिवस व समर्थ दिवस कहते हैं, समझा? उसी स्मृति के आधार पर बाप दादा देख रहे हैं कि देश विदेश में चारों ओर बच्चे निमित्त बन सेवा में सदा आगे बढ़ते रहते हैं और बढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि विशेष त्रिमूर्ति वरदान बच्चों के साथ है। कौन सा वरदान? त्रिमूर्ति वरदान, शिव बाप का तो है ही, लेकिन साथ में भाग्य विधाता ब्रह्मा बाप का भी वरदान है। शिव बाप अर्थात आत्माओं का बाप, सिर्फ बाप, दूसरा कोई संबंध नहीं, लेकिन साथ साथ भाग्य विधाता ब्रह्मा बाप। दुनिया में भी भाग्य विधाता कौन माने जाते हैं, माता पिता। तो जैसे माता पिता में माता पहले बाप बाद में, ऐसे ही यहाँ भी कौन, ब्रह्मा बाप, उनका भी वरदान है। साथ में जगत अम्बा सरस्वती माँ की भी, माता की भी मधुरवाणी का वरदान है। इसलिए त्रिमूर्ति वरदानों से सहज सफलता का अधिकार अनुभव कर रहे हो, आगे चल और भी सहज साधन श्रेष्ठ सफलता के अनुभव होने हैं। अभी भी उतना सहज नहीं है, आगे चल के और ही सहज हो जाएगा। बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का उमंग उत्साह चारों ओर है कि जल्दी से जल्दी प्रत्यक्षता हो जाए, मुसीबत छूटे। अभी यही चाहते हैं ना, क्या चाहते हैं, कि जल्दी से जल्दी बाप दादा की दुनिया में प्रत्यक्षता हो जाए। बाप की प्रत्यक्षता भी एक मुसीबत है, बड़ी भारी, ये नहीं समझते हैं। कब हो जाए, कल हो जाए कि यहां बैठे बैठे प्रत्यक्षता के नगाड़े सुनो। कहीं कुछ भी जाना आना न पड़े, कहीं आयास न उठाना पड़े, प्रयत्न कुछ भी न करना पड़े, बैठे बैठे कल ही हो जाए। हुआ ही पड़ा है, सिर्फ क्या करना है, कर भी रहे हो और करना भी है। संपूर्ण प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए तो मुरली की बजाय नगाड़े ही नगाड़े बजने लगे। मुरली की आवाज भूल गई और कानों में क्या गूंजने लगा, नगाड़े के ही शब्द गूंजने लगे। संपूर्ण प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए सिर्फ एक बात करनी है, दो भी नहीं, एक बात। वो एक बात क्या है, प्रत्यक्षता का आधार आप बच्चे हैं, और बच्चों में विशेष एक बात की अंडरलाइन करनी है, क्योंकि प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा दोनों का बैलेंस सर्वात्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। कौन सा आधार है, प्रतिज्ञा। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा दोनों का बैलेंस हो। प्रतिज्ञा तो रोज करते हो कि बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, लेकिन जो प्रतिज्ञा करते हो सिर्फ प्रत्यक्षता क्यों नहीं होती, क्योंकि दृढ़ता पूर्वक प्रतिज्ञा नहीं करते हो। एक तरफ प्रतिज्ञा करते हो और माया कुछ न कुछ बुद्धि को हिलाए देती है, और जो प्रतिज्ञा करते हो वो प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो पाती, संशय पैदा हो जाता है। तो संशय निश्चय को हिलाए देता है, पता नहीं ये बाप है या नहीं है। तो प्रतिज्ञा तो रोज करते हो ना, फिर प्रत्यक्षता में देरी क्यों है, अभी अभी हो जानी चाहिए ना। तो बाप दादा ने देखा, प्रतिज्ञा करते भी दिल से हो और प्यार से करते हो, लेकिन क्या है, प्रतिज्ञा करते हो लेकिन एक होता है प्रतिज्ञा और दूसरी होती है दृढ़ प्रतिज्ञा। जैसे ध्रुव तारा अखंड है, अडोल है, अपना स्थान छोड़ता नहीं, तो दृढ़ प्रतिज्ञा की निशानी क्या है, जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती। जब जान की बाजी की बात आ गई तो छोटी छोटी समस्याएं वह समय प्रति समय के कितने भी विकराल रूपधारी सर्कमस्टांसेस क्यों न हो, तो जान की बाजी के आगे ये सब क्या है। तो दृढ़ प्रतिज्ञा इसको कहा जाता है, जो कैसी भी परिस्थितियां हों लेकिन परिस्थिति पर माना पराई, दूसरे के द्वारा लाई गई स्थिति, माना माया रावण के द्वारा लाई गई स्थिति, माया रावण को तो पहचान लिया है ना, वो बाहर की दुनिया में है या ब्राह्मणों की दुनिया में पहले है, ब्राह्मणों की दुनिया में भी बाद में, पहले हमारे अंदर रावण है। हमारे अंदर अगर माया न हो, हमारे किए हुए कर्मों की जो माया मन बुद्धि में भरी हुई है, वही हमारे सामने कमजोरी बन करके आती है और हमको कमजोर करती है। तो परिस्थिति स्वस्थिति को हिलाए नहीं सकती। कभी भी किसी भी हालत में हार नहीं खा सकते हो, लेकिन गले का हार बनेंगे। कौन? जो माया और रावण, स्त्री और पुरुषों के रूप में जो निमित्त बनकर के परिस्थितियां लाने वाले हैं, वो क्या बन जाएंगे? गले के हार बन जाएंगे, विजय माला बनेंगे, परमात्मा गले के श्रृंगार बनेंगे। इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प, अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा। तो दृढ़ता शब्द को अंडरलाइन करना है, प्रतिज्ञा करना अर्थात प्रत्यक्ष सबूत देना, इस बात का प्रत्यक्ष स्वरूप सबूत है, बाप की प्रत्यक्षता का प्रत्यक्ष सबूत। क्या होता है प्रत्यक्ष सबूत है? बच्चे लिखते हैं कि हमने ये सर्विस की, वो सर्विस की, ऐसे किया, वैसे किया, तो ये सब जो किया तो कहने से मान लेंगे क्या? उसका प्रैक्टिकल प्रूफ क्या होगा? सिर्फ आत्मा आएगी, आत्मा है तो देर आती रहती है, रियलाइज भी करती है। माउंट आबू में जब तक रह करके रियलाइज करती है ऊंची स्टेज में, तब रियलाइज करती है और उस दुनिया में गई, नीचे उतरे और फिर कला। हाँ, दृढ़ प्रतिज्ञा वाली आत्माएं आए, पावरफुल आत्मा आकर के बाप के सामने माथा झुकाए, झुक जाए। प्रतिज्ञा करना अर्थात प्रत्यक्ष सबूत देना। लेकिन अभी कभी कभी कई बच्चे प्रतिज्ञा भी करते हैं, लेकिन साथ में एक खेल भी बहुत अच्छा करते हैं। समझ तो गए होंगे, क्योंकि समझदार तो बहुत बन गए, तो खेल क्या करते हैं? जब कोई समस्या व सर्कमस्टांसेस होता तो प्रतिज्ञा को कमजोर बनाने का कारण होता है, उस कारण को निवारण करने के बजाय बहानेबाजी का खेल बहुत करते हैं। जो कारण पैदा हुआ उसको निवारण कर देना चाहिए, लेकिन अपने अंदर ही वो कमजोरी भरी हुई है, तो कारण निवारण करने की बजाय क्या करते हैं? बहानेबाजी बहुत करते हैं। इसमें बहुत होशियार हैं। और बहानेबाजी की भाषा क्या होती है? दूसरा पेज, ऐसे नहीं था, ऐसे था, ऐसा नहीं होता तो वैसा होता, इसने ऐसे कहा, इसने ऐसे किया, सर्कमस्टांसेस ही ऐसे बन गए, बात ही ऐसी कुछ आ गई, तो ऐसा और वैसा, ये भाषा बहानेबाजी की है। और दृढ़ प्रतिज्ञा की भाषा है ऐसा हो वा वैसा हो, लेकिन मुझे बाप जैसा अटल, अखंड और अडोल बनना, मुझे बनना है, दूसरों को मेरे को नहीं बनाना है कि दूसरे मेरे को मोल्ड करें और मैं फट से मोल्ड हो जाऊं। नहीं, मुझे बनना है, दूसरे ऐसे करें तो मैं अच्छा रहूं, ये नहीं, दूसरा सहयोग दे तो मैं संपन्न बनूं, संपूर्ण बनूं। इसको लेने के बजाय मास्टर दाता बन, सहयोग, स्नेह, सहानुभूति देना ही लेना है। तो याद रखना ब्राह्मण जीवन का अर्थ यह है देना, और देना ही लेना है, देने में ही लेना। इसलिए दृढ़ प्रतिज्ञा का आधार है स्व को देखना, स्व को बदलना और स्वमान में रहना। स्वमान है ही मास्टर दातापन का। तो इस अव्यक्त वर्ष में क्या करेंगे? इस 93 वर्ष का नाम क्या दिया? अव्यक्त वर्ष। इस वर्ष का ही नाम क्यों अव्यक्त वर्ष दिया? क्या अभी तक अव्यक्त रहने की प्रैक्टिस नहीं की क्या? बाप दादा कब से अव्यक्त हुए? 69 से अव्यक्त हुए, 24 वर्ष हो गए, और बच्चे अभी तक अव्यक्त नहीं हुए। अगर बच्चे अव्यक्त नहीं हुए तो व्यक्त में रहने वाला बाप, साकार शरीर से प्रत्यक्ष होने वाला बाप संसार में, जो अभी अव्यक्त स्टेज का पार्ट बजाय रहा है, उससे मिलन, असली मिलन नहीं मना सकते, क्योंकि अव्यक्त के साथ अव्यक्त का मिलन शोभेगा, नहीं तो माया बीच में वाइलोरा जरूर डालती है। तो इस अव्यक्त वर्ष में क्या करेंगे? ये लास्ट वर्ष, जैसे 76 कौन सा वर्ष था? प्रत्यक्षता वर्ष। क्या उससे पहले बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा नहीं हुई, या बाद में बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा नहीं हुई? 76 ही बाप का प्रत्यक्षता वर्ष क्यों हुआ? जरूर कोई गहरा राज था ना। तो ऐसे ही 93 का वर्ष है अव्यक्त वर्ष। मधुबन में प्रतिज्ञा करके जाएंगे, और वहां जाकर के बहानेबाजी का खेल करेंगे क्या?
हम सब चीज ठीक हो
क्या? लेकिन
जिस अंदर में जो जो अवगुण है सब चीज में लिखे, एक तीस बोर्ड का बॉक्स था उसमें सब जमा थे।
सारे अवगुण ही अवगुण है, अभी गुण कहाँ से आ गए? दुनिया ही अवगुणधारियों की है।
जो अवगुण त्याग कर सकते वो ही लिखना,
और बाकी जो रह जाए तो रह जाए। प्रतिज्ञा दृढ़ के बजाय कमजोर होने का, बाप प्रतिज्ञा में लूज होने का एक ही मूल कारण है। जैसे कितनी भी बड़ी मशीनरी हो, लेकिन एक छोटा सा स्क्रू भी अगर लूज हो जाता है तो सारी मशीन को बेकार कर देता है। ऐसे प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान बहुत अच्छे अच्छे बनाते हो, पुरुषार्थ भी बहुत करते रहते हो, लेकिन पुरुषार्थ व प्लान को कमजोर करने का स्क्रू एक ही है, अलबेलापन। वो भिन्न भिन्न रूप में आता है और सदा नए नए रूप में आता है, पुराने रूप में नहीं आता है। ये अनबेलेपन का लूज स्क्रू टाइट करो, ये तो होता ही है नहीं, इतना स्क्रू लूज तो होता ही है नहीं, क्यों? ये नहीं होता है, होता ही है, चलता ही है, ये है अलबेलापन। हो जाएगा, देख लेना, एतबार करो। दादी दीदी मेरे ऊपर एतबार करो, हो जाएगा, हो जाएगा, वह होता ही है नहीं, बाप जैसा बनना ही है, और अभी अभी बनना, कभी नहीं, अभी। तीसरी बात, प्रतिज्ञा को दृढ़ता से कमजोर बनाने का आधार, पहले भी हंसी की बात सुनाई थी कि बच्चों की नजदीक की नजर कमजोर है और दूर की नजर बहुत बहुत तेज है। नजदीक की नजर है स्व को देखना और स्व को बदलना, और दूर की नजर है दूसरों को देखना। दूसरा जो होता है कुछ न कुछ अपने से दूर ही होता है। चलो इन आंखों की बात न सही, बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र की ही बात सही। तो मन बुद्धि रूपी जो आत्मा तीसरा नेत्र है उसके मुकाबले जो दूसरी आत्मा होगी वो तो कुछ न कुछ दूर ही होगी ना। तो दूर की कमी, दूर वाले की नदी कमी और अवगुण पहले दिखाई पड़ जाएंगे, और अपने अंदर के नहीं दिखाई पड़े। तो दूर कौन है और पास कौन है? अभी ब्राह्मण बच्चों की नजर कहाँ है? ब्रह्मा बाप के जो बच्चे अपने को कहलाते हैं उनकी नजर कहाँ है? हैं? पार्टी के ऊपर, पार्टी में तो ढेरों हैं। पार्टी में कोई एक ही बात है क्या? हैं? ब्राह्मणों की नजर कहाँ लगी हुई है? चाहे बेसिक नॉलेज वाले हैं नगाड़े बुद्धि में बजते रहते हैं कि नहीं? जब बजते हैं तो नजर कहीं जाती है ना, तो स्व के ऊपर ज्यादा जाती है या पर के ऊपर ज्यादा जाती है? कौन है पर, कौन है दूसरा जिसके ऊपर जाती नजर जा रही है? एडवांस वालों की भी नजर, कोई दिन ऐसा नहीं होता जो उधर नजर न घूमती हो। और बेसिक वालों की भी नजर, दूसरों की बात नहीं है, कोई एक बताओ जिसके ऊपर नजर जाती जरूर है, हैं? वो कौन एक है जिसके ऊपर नजर जाती है? शंकर के ऊपर नजर जाती है, हैं? बेसिक नॉलेज वालों की भी और एडवांस वालों की भी एक की ही ऊपर नजर जाती है, वही पर है, वही पराया है। अभी तो पराया ही है, बिच्छू चिंदन सर्प सर्पिणिया उसको घेरे बैठे हैं। तो हमारा तो नहीं हुआ, कौन हुआ, किसका हुआ? हाँ, राम ही रावण बन गया है। रावण राज्य है, मुरली में तो बोला है राम ही रावण बन जाता है, कृष्ण ही कंस बन जाता है। तो किसके ऊपर नजर जाती है? स्व के ऊपर जाती है कि पर के ऊपर नजर जाती है? स्व कौन है और पर कौन है? अरे स्व के मतलब मैं आत्मा, तो मैं आत्मा में जो स्वभाव संस्कार भरे हुए हैं वो स्वभाव संस्कार जरूर जितने भी 5 करोड़ मनुष्य आत्माएं और दूसरी हैं उनके मुकाबले कुछ न कुछ दूरी तो स्वामी है जरूर कि बिल्कुल नजदीक है, हैं? नजदीक हैं क्या किसी के? अगर कोई आत्मा स्व को किसी के बिल्कुल नजदीक समझती है कि हम उसके विशेष नजदीक हैं, तो जिसके नजदीक हैं उसको पहचानेंगे ना, किसके नजदीक हैं? बाप के नजदीक। जब बाप के ज्यादा नजदीक हैं तो ज्यादा जो नजदीकी होता है उसके अवगुण दिखाई पड़ते हैं क्या? जो जाति नजदीक होगा, जाति प्यारा होगा, उसके कभी अवगुण नहीं दिखाई दे सकते। तो उस हिसाब से बताया कि प्रजापिता का रोल या शंकर का रोल इतना वंडरफुल है जो तुम बच्चे भी विश्वास कर न सको। मतलब क्या हुआ? वो पर रावण से घिरा हुआ दिखाई देता है कि इसको भी माया रावण असर करता है, लेकिन अपने को नहीं देखते, स्व को देखने की दृष्टि नहीं रहती। तो बताया नजदीक की नजर है स्व को देखना और स्व को बदलना, और दूर की नजर है दूसरों को देखना। तो किसको देखना है? स्व माने आत्मा, और कौन है स्व? है और स्व कौन है? सिर्फ आत्मा ही स्व है। शरीर तुम पर है, वो तो प्रकृति की चीज है। मैं आत्मा, बस शिवो हम, मैं आत्मा, आत्मा तो परमात्मा और कोई नहीं। अरे परमात्मा, परमपिता, परमात्मा शिव भी तो स्व है, वो हमारा है कि नहीं है? वो तो है ना। तो किसको देखना है? देखना है शिव को या सब को? शिव को देखना है, लेकिन शिव को देखने की बजाय कौन दिखाई पड़ जाता है? सब मुर्दा। मुर्दे से ज्यादा कोई तमो प्रधान चीज और होती है? दो दिन रख दो तो वो कितनी सरांद मारता है इसको। अच्छा, तो मुर्दे को कंधे पर रखो, सुप्रीम सोल को छोड़ दोगे? सुप्रीम सोल बैठा हुआ है, सिर्फ शिव को रखो। क्या? सिर्फ इतना याद रखो कि वो शिव उस मुर्दे के द्वारा कार्य कर रहा है। तमो प्रधान आत्मा कोई सेवा का कार्य नहीं कर सकती। अपने अंदर भी ये कभी अहंकार नहीं लाना कि मैंने इतनी सेवा की। जो भी 108 मन के हैं, वो अभी तमो प्रधान दुनिया में खुद अपने को ही संभालने में आए उपजे हैं। उनके अंदर सेवा करने वाला कौन कार्य है? कौन सी हस्ती है? बाप और दादा। तो वो सेवा करने वाला नहीं है, तो किसको याद करना है? पहले किसको देखना है? स्व आत्मा को और परमात्मा शिव जो उस मुर्दे के द्वारा कार्य कर रहा है। जैसे कि शंकराचार्य को क्या दिखाया कि शंकराचार्य ने अपना शरीर क्या बना दिया? मुर्दा बना दिया। तो शरीर मुर्दा हो गया और आत्मा फिर दूसरे मुर्दे में घुस गई। किस मुर्दे में? किसी राजा के शरीर में घुस गई। तो परमात्मा शिव भी जैसे सब में प्रवेश करता है, तो जो शंकर को याद करते हैं, क्योंकि प्रजापिता पतित है या पावन है? वो भी तो पतित हुआ ना। तो पतित को जो याद करते हैं या उस आशा से उसको याद करते हैं, तो उनको संग किसका लगेगा? पतित का संग लगेगा। और जो ये समझ के याद करते हैं कि ये पावन है, शिव बाबा है, एवर प्योर है, तो उससे क्या प्राप्ति करने की आशा होगी? प्योरिटी की। तो संग का रंग लगता है। सारी स्मृति की बात है, सारी भावना की बात है। तो पर को नहीं देखना है। किसको देखना है? स्व आत्मा को देखना और अपने बाप को देखना। बाप को देखने का मतलब ये नहीं सिर्फ बिंदु, बिंदु अगर शरीर धारण न करे तो जैसे जड़ हो गया, मुरली में बोला है। तो वो ज्योति बिंदु बाप भी कोई सिर्फ इस समय बिंदु बन करके पाठ नहीं बजा रहा है, वो बिंदु जो भी एक्ट कर रहा है, तो वो एक्ट के बगैर दुनिया परिवर्तन होने वाली नहीं है। तो बताया कमजोरियों को देखना, विशेषता को नहीं देखना। दूसरों को देखो तो क्या देखो, विशेषता को देखो, उसकी कमजोरी को नहीं देखो। इसलिए दृढ़ता के उमंग उत्साह में अंतर पड़ जाता है। इसलिए पड़ जाता है, हैं? दूसरे की कमजोरी को देखते हो और उसकी दृढ़ता को, दृढ़ता को नहीं देखते, विशेषता को नहीं देखते। ये बड़े बड़े भी ऐसे करते हैं, हम तो छोटे हैं। और बड़े बड़े कौन हैं दुनिया में, है? जो बड़े बड़े जितने भी दुनिया में हैं, रामा, कृष्ण, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, इनसे बड़ा तो कोई और दुनिया में ताल से बजाने वाला होता ही नहीं, पावरफुल। वो भी दुनिया में धूल चाट जाते हैं, चाट जाते हैं कि नहीं? देह अभिमानी की धूल चाटने वाले बन जाते हैं कि नहीं? वो भी कपड़ा खुल हो जाते। तो फिर किसको याद करना है? तो दुनिया में जो बड़े बड़े हैं, वो बड़े कौन हैं और छोटे कौन हैं? है? हमारे लिए बड़े कौन हैं? सर्व स्मृतियों का खजाना दिया, तो सर्व स्मृतियों का खजाना सबसे जास्ती लेने वाले भी होंगे और नंबर वार लेने वाले भी होंगे जरूर। तो जिसने वो खजाना सबसे जास्ती लिया, वो पावरफुल हुआ या कमजोर हुआ? पावरफुल हुआ। तो उन बड़ों बड़ों की विशेषता को देखना चाहिए या कमजोरी को देखना चाहिए? और दिया किसने? समर्थ बाप ने दिया। तो इसका मतलब समर्थ बाप की जो दृष्टि है, वो दृष्टि क्या ठीक नहीं है? जो ऐसे ऐसों को दे दिया, जो उस खजाने का सही उपयोग नहीं करते हैं, वो समर्थ बाप भी ऐसों को पहले देता है? ऐसा नहीं है। जो समर्थ बाप देने वाला है, वो तीनों कानों को जानने वाला है, पुरुषार्थ की गुह्य गति को भी जानने वाला है कि कौन सी आत्मा की कितनी और कैसी पुरुषार्थ की गुह्य गति है। ब्रह्मा बाप की गुह्य गति में विशेष पॉइंट क्या बताया, जो बहुत वंडरफुल पॉइंट है? एक सेकंड में ब्रह्मा को विष्णु बनता है, और एक सेकंड में ब्रह्मा को विष्णु बनता है, बाकी 50, 60, 65 वर्ष कहाँ चले गए? वो 60, 65 वर्ष में क्यों नहीं ब्रह्मा को विष्णु बन गया? 60, 65 वर्ष में नहीं बना तो एक सेकंड में बन जाएगा, है? बोलो, पुरुषार्थ तो होता है। अरे जो 60, 65 वर्ष में पुरुषार्थ करके ब्रह्मा तो विष्णु नहीं बन सका, वो एक सेकंड में कैसे बन जाएगा? तो जरूर 60, 65 वर्ष जो पुरुषार्थ किया है, उसमें भी उसकी ये गुह्य गति यही होगी कि वो पुरुषार्थ की रफ्तार में, तीव्रता में हम बच्चों से तो कहीं कई गुना आगे ही होंगे। इतने आगे होंगे कि बच्चे दौड़ते हुए आगे भाग जाएं और बाप भले पीछे रह जाए कितना भी, फिर जब वो बाप और दादा दौड़ लगाएंगे तो फिर भी बच्चों से आगे जाएंगे? कहां माँ बाप की शक्ति और कहां बच्चों की शक्ति? तो एक सेकंड का मतलब क्या हुआ? आत्माओं को परम धाम में दौड़ लगानी है, परे से परे ऊंची स्टेज में। उस परे से परे ऊंची स्टेज में दौड़ दौड़ने वाले नंबर वार पुरुषार्थ संसार बच्चे हैं। कोई तो ऐसी दौड़ लगाने वाली भी आत्माएं हैं जो इस जन्म में साधारण सा सिपाही हैं और इसी जन्म में सम्राट बन के बैठ गई है। बोलो हिस्ट्री में बैठी है कि नहीं है? कौन सी आत्मा का मिसाल है, कौन सी आत्माओं का मिसाल है? बाबर का मिसाल, शिवाजी का मिसाल क्या है? एक साधारण सा व्यक्ति, वो भी जिस बाप का चलो सूबेदार हो कुछ भी हो, उस बाप ने भी उसको सहयोग नहीं दिया तो सिपाही भी नहीं हुआ, उसकी औकात एक सिपाही की जैसी भी नहीं हुई, लेकिन फिर से टक्कर ली। जो सम्राट था सारे हिंदुस्तान का, उसको ना पहुंचाने चबाई दिए और उसकी आधीनता स्वीकार नहीं की। तो ऐसी पुरुषार्थ में तीखी आत्माएं, वो अपनी तीखेपन के पुरुषार्थ की नूद कहां करती है? जरूर संगम युग में ही ये हंसों की गुह्य गति है, गुह्य चाल है, जो साधारण मनुष्यात्माओं की समझ में नहीं आ सकती। अव्यक्तवाणी में भी बोला कि 108 माला के जो मणके हैं वो 100 मणके फिर भी 90% सेट हो जाते हैं, लेकिन 8 मणके नीचे ऊपर बहुत होते हैं। जो 8 स्कॉलरशिप लेने वाले हैं वो नीचे ऊपर हो रहे हैं, तो फिर वो स्कॉलरशिप लेने वाले कैसे साबित होंगे? जरूर उनकी गुह्य गति है, उनकी पुरुषार्थ की जो रफ्तार है, तन मन धन अर्पण करने की जो अभ्यास है, एक सेकंड में नष्ट वोहा बनने का जो अभ्यास है, उनका अभ्यास हमारे से कहीं ज्यादा तीखा है। तो बताया कि दूर की कमजोरी देखने की नजर धोखा दे देती है, वो चाहे अष्ट रतन ही क्यों न हो, लेकिन रतन पत्थर हैं या चैतन्य शिव हैं, नवरत्नों की अंगूठी बनाते हैं। तो नवरत्नों में शिव ज्योति बिंदु होगा या रतन कोई और दूसरे होंगे? शिव ज्योति बिंदु रतनों में होगा, रतनों की मिसाल तो पत्थर की है, वो शिव ज्योति बिंदु कभी पत्थर बुद्धि नहीं बनता। बाकी चाहे मोस्ट वैल्यूबल रतन हो अथवा नॉन वैल्यूबल रतन हो, नौ रतन की अंगूठी में 9 के 9 पत्थर बुद्धि बनते और पत्थर से फिर पारस बुद्धि बनते, तो किसको देखना है? शिव को देखना है, सिर्फ इतना समझ लेना है कि वो शिव क्या और कैसे रूप में पाठ बजा रहा है। मैं जो हूँ और जैसा हूँ और जिस रूप में पाठ बजाता हूँ, पवित्र में पाठ बजाता हूँ कि अपवित्र में पाठ बजाता हूँ, तमो प्रधान में पाठ बजाता हूँ या सतो प्रधान में पाठ बजाता हूँ? सतो प्रधान में शिव बाबा पाठ बजाते हैं, सतो प्रधान जो सन्यासी होते हैं उनमें शिव बाबा आकर के पाठ बजाते हैं। पवित्र में परमात्मा प्रवेश करता है, पवित्र को पवित्र बनाया तो क्या बड़ी बात, किसको पवित्र बनाता है? पतित दुनिया को पावन बनाता है। इस दुनिया का जो पतित से पतित मनुष्य तन हो उसको पावन बनाता है, तो सारी दुनिया अपने आप पावन बन जाएगी। तो इस सृष्टि का जो बीज है, मनुष्य सृष्टि साकार है तो मनुष्य सृष्टि का बीज भी साकार होगा। वो बीज ही जब बोया जाता है धरणी में तो फर्स्ट नंबर पहले जो पार्ट बजाता है वो क्या पार्ट बजाता है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, क्या दाना क्या बन जाता है, सड़ जाता है, मिट्टी में मिला देता है अपने को, तब वो बाग बनता है, सरसब्ज पौधा बनता है। तो उस बीज रूप बाप ने यज्ञ के आदि में भी ऐसा पार्ट बजाया था और अंत में भी अपनी परवाह नहीं करता, लेकिन विश्व कल्याण की परवाह उस बच्चे को होती है सिर्फ, बाकी और सब बातों में क्या है, पत्थर बुद्धि। तो अभी किस बात पर जोर दे रहे हैं अगर सब बाप दादा कई वर्षों से, और कुछ तुम्हारे अंदर चित्त हो ना हो, क्या चित्त होनी चाहिए, बात की पहचान, शुभ भावना और शुभ कामना सर्व के प्रति। तो बोला कमजोरी देखने की जो नजर है वो धोखा देती है, इस कारण प्रतिज्ञा को प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते हो, समझा कारण क्या है। तो अभी इसको टाइप करना आएगा या नहीं आएगा, समझ का स्क्रू ड्राइवर आपके पास है, बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र जो समझ कही जाती है वो स्क्रू ड्राइवर है उसको टाइट करने का कि नहीं है, यंत्र तो है ना। तो इस वक्त समझना, चाहना और करना तीनों को समान बनाओ, ऐसे नहीं कि समझते भी हैं चाहते भी हैं लेकिन क्या करें। तो तीनों को समान करना अर्थात बाप समान बनना। अगर बाप दादा कहेंगे कि सभी लिख कर दो तो कितने में लिखेंगे, सेकंड में लिखेंगे, लिखना सहज है, चिट्ठी पर लिखना कोई बड़ी बात नहीं, मस्तक पर दृढ़ संकल्प की स्याही से लिख दो। लिखना आता है कि नहीं आता है, सभी को आता है, मस्तक पर लिखना आता है या सिर्फ चिट्ठी पर लिखना आता है, सभी ने लिखा, जिसने लिखा वो हाथ उठाओ, कोई ने हाथ उठा दिए, पक्का हाथ उठाया, कच्चा तो नहीं, जो दो दिन में मिट जाए ऐसा तो नहीं हाथ उठाया। देखो उलहना मिल रहा है कि कभी कभी कच्चा कर देते हैं, करना ही है, जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए। क्या हिस्ट्री में भी इस तरह का स्लोगन है, किसका दिया हुआ स्लोगन है, देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि, ये किसने दिया स्लोगन, शिवाजी ने, क्या कि देह भले गिर जाए टूट जाए समाप्त हो जाए लेकिन कार्य जरूर करके छोड़ेंगे। ब्रह्मा बाप ने भी क्या किया है, देह छूट गई लेकिन अंत मते तो गते, वो आत्मा भले शरीर ही छूट गया तो भी सूक्ष्म शरीर से क्या करके
संपन्न हो,
हाँ संपन्नता को जरूर प्राप्त करना है। तो बोलो ऐसा दृढ़ संकल्प ही बाप समान सहज बनाएगा, नहीं तो कभी मेहनत और कभी मोहब्बत इसी खेल में चलते रहेंगे, क्या फिर तो बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत कठिन है। इसका मतलब क्या हुआ, जब बहुत मुश्किल है बहुत कठिन है तो सहज हुआ, यह मेहनत हुई, मोहब्बत की गोदी में पलने वाले हो या मेहनत में पलने वाले हो, जो मोहब्बत की गोदी में है उनको कभी कोई कठिनाई हो नहीं सकती। आज के दिन सभी बच्चे देश विदेश के तन से वहाँ हैं, लेकिन मन से मधुबन में। इसलिए सभी बच्चों के स्मृति दिवस के अलौकिक अनुभव बाप दादा ने देखे, अच्छे अच्छे अनुभव किए हैं, सेवा भी की है, अलौकिक अनुभवों की और सेवा की हरेक बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। सबके शुद्ध संकल्प, मीठी मीठी रूरियान और प्रेम के मोतियों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई। रिटर्न में बाप दादा भी स्नेह की माला सभी बच्चों के गले में डाल रहे हैं। हर एक बच्चा अपने अपने नाम से विशेष याद प्यार स्वीकार करना। बाप दादा के पास रूहानी वायरलेस सेट इतना पावरफुल है जो एक ही समय पर अनेक बच्चों का दिल का आवाज पहुंच जाता है। न सिर्फ आवाज पहुंचता है, लेकिन सभी की स्नेही मूर्ति भी इमर्ज हो जाती है। इसलिए सभी को सन्मुख देख बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। जो दूर बैठे हैं उनके लिए कहा, अच्छा सर्व समर्थात्माओं को सर्व दृढ़ प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता का बैलेंस रखने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा समझना, चाहना और करना, तीनों को समान वाले बनाने वाले बाप समान बच्चों को सदा समस्याओं को हार खिलाने वाले परमात्मा गले का हार बनने वाले विजयी रत्नों को बाप दादा समर्थ का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। संगठन से, साथ से, उमंग उत्साह से आगे बढ़ते जाते तो आप सभी भी रूहानी यात्रा पर सदा आगे बढ़ते रहना, क्योंकि बाप का साथ, बाप के सहयोग साथ के आधार पर ब्राह्मण संगठन का साथ, तो ब्राह्मण परिवार का साथ बाप का साथ कितना बढ़िया साथ है। अगर कोई अच्छा साथी होता है तो कभी भी बोर नहीं होते, थकते नहीं है, तो सदा आगे बढ़ने वाले सदा ही हर्षित रहते हैं, सदा खुशी में नाचते रहते हैं, तो वृद्धि को पाते रहते हो ना, वृद्धि को प्राप्त होना ही, क्योंकि जहां भी जिस कोने में बिछड़े हुए बच्चे हैं वहां वो आत्मा समीप आनी जरूर है। इसलिए सेवा में भी वृद्धि होती रहती है, कितना भी चाहो शांत करके बैठ जाए, पुरुषार्थ करना बंद कर दें, लेकिन बैठ नहीं सकेंगे, सेवा बैठने नहीं देगी, आगे बढ़ाएगी, क्योंकि जो आत्मा बाप की थी वो बाप की फिर से बननी। अच्छा मुख्य भाइयों से अब तक बाप दादा की मुलाकात। पांडव सोचते हैं कि शक्तियों को चांस अच्छा मिलता है, दादियां बनना अच्छा है, दादा बनना अच्छा नहीं है, लेकिन पांडव अगर प्लानिंग बुद्धि नहीं है तो फिर सखियां क्या कर सकेंगी। अंतिम जन्म में भी पांडव बनना ये कोई कम भाग्य नहीं है क्या, क्योंकि पांडवों की विशेषता तो ब्रह्मा बाप के साथ ही है, तो पांडव भी कम नहीं है, ब्रह्मा बाप के हमजिंस कौन, पांडव शक्तियों को हमजिंस थोड़े ही कहेंगे, पांडवों के बिना शक्तियां नहीं और शक्तियों के बिना पांडव नहीं। चतुर्भुजी की दो भुजा वो है और दो भुजा वो है क्या, दो भुजा चतुर्भुज की पांडव और दो भुजा चतुर्युग चतुर्भुज की शक्ति है। कौन कौन सी दो भुजा है? दो भुजा कौन सी? पांडव। और दो भुजा कौन सी शक्ति है? संगम युग में प्रैक्टिकल चतुर्भुज का रूप होता है। दो भुजा शक्तियां कौन सी है? अरे राइट हैंड कौन कौन से और लेफ्ट हैंड कौन कौन से? गोप हैं लेफ्ट हैंड और शक्तियां हैं राइट हैंड। तो लेफ्ट हैंड वाले गोप कौन कौन हुए है? हाँ, रामकृष्ण का जो रोल है पुरुष रूप में वो, और शक्ति के रूप में राधा और सीता। तो पांडवों की विशेषता अपनी है, निमित्त सेवा इन्हों की है, दादियों की ब्रैकेट में लिखी है, इसलिए ये करती है। बाकी सदा पांडवों के लिए शक्तियों को और शक्तियों के लिए पांडवों को स्नेह है, रिगार्ड है और सदा रहेगा। शक्तियां पांडवों को आगे रखती हैं, इसमें ही सफलता है, और पांडव शक्तियों को आगे रखते हैं, इसमें सफलता है। पहले आपका पाठ दोनों को पक्का करना है। पहले आप कहते कहते खुद भी पहले आप हो जाएंगे। आप बीच में हैं तो झगड़ा ही नहीं। पांडवों को बुद्धि का वरदान अच्छा मिला हुआ है। क्या कहा है? ज्यादा बुद्धि पीछी किसकी चलती है? पांडवों की। जो जिस कार्य के निमित्त बने हुए हैं उनको वही विशेषता मिली हुई है। रुद्रमाला के माने के सब क्या है? पांडव हैं या क्षत्रिय हैं? स्वभाव संस्कार से तो पांडव, तो जरूर उनकी बुद्धि जास्ती चलती होगी। और हरे की विशेषता एक दो से आगे है, पांडवों की शक्तियों से आगे, शक्तियों की पांडवों से आगे, इसलिए आप निमित्त आत्माएं हो। अच्छा,
जिनसे बच्चों को विश्व की बादशाही का वर्षा नंबर वार मिलना है, वो माता पिता सामने बैठे हैं, बाबा बरोबर आप कल पहले आए थे। कल पहले माना शूटिंग के हिसाब से, कल पहले आए थे। कल्प कल्प भी आप ऐसे आते हो, ये हम जानते हैं और कोई नहीं जानते। 84 जन्म के चक्र को जान गए हो, अभी बाप से आशीर्वाद लेने में भूल मत करो। अगर माता पिता को भूलेंगे तो आशीर्वाद लेने में भी भूल करेंगे। ये बड़ी जबरदस्त आशीर्वाद है। बाकी लौकिक बाप तो खुद सुख लेकर के फिर बच्चों को तो सुख देते हैं, उनकी बात तो अलग है। ये बाप खुद तो विश्व की बादशाही लेते नहीं, लेकिन तुम बच्चों को देते हैं। ये बाप आकर बच्चों को विश्व का मालिक बनाए, खुद निर्वाण धाम में बैठ जाते हैं, वाणी से परे हो जाते हैं। ये खुद सृष्टि का सुख नहीं लेते हैं। क्या कहा? नई सृष्टि स्वर्ग का सुख ये खुद नहीं लेते, इसलिए शंकर को कांटों के